स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 2 मार्च और दिन शुक्रवार। छत्तीसगढ़ पुलिस का दावा, मुठभेड़ में 10 माओवादियों की मौत।
आज सुबह एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहे थे, उसमें एक घटना स्थल से अभी तक 10 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर हुआ है। उसमें 4 महिला नक्सली है और बाकी 6 पुरुष माओवादी का डेड बॉडी रिकवर हुआ है।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अल्यूमिनियम और स्टील पर लगेगा आयात शुल्क। विवेचना में जानी एक जमाने में मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन रहे हाजी मस्तान हैदर मिर्जा के बारे में।
जब हमने पीपल सेक्रेटरी बनाया था, हम दवा बांट रहे थे गरीबों को, वो पुलिस से देखा नहीं गया, फिरका परस्तों से देखा नहीं गया, इस पर मेरे पे रेड मार दी और 25 दिन जेल में रख के छोड़ दी। जब से मैंने सोचा कि मुझे सियासत में जाना चाहिए।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस ने एक मुठभेड़ में कम से 10 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। पुलिस ने कहा है कि मारे गए माओवादियों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। मारे गए माओवादियों से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद करने का दावा किया है। एल्यूमिनियम और स्टील के आयात पर कठोर टैरिफ लागू करने पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि व्यापार युद्ध अमरीका के लिए अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि लगभग हर देश के साथ व्यापार के कारण उसे अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। वहीं उनके इस फैसले की निंदा करते हुए चीन के स्टील उद्योग ने इसे बेवकूफाना बताया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में विदेशी सैनिकों को निशाना बनाकर किए गए एक कार बम धमाके में एक नागरिक की मौत हुई है। इस धमाके में आसपास खड़े अन्य 14 लोग घायल हुए हैं। चश्मदीदों का कहना है कि धमाके से आसपास के घरों और दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। अभी तक किसी समूह ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। जब धमाका हुआ उस समय एक चश्मदीद खान मोहम्मद घटनास्थल के करीब थे।
जब शक्तिशाली धमाका हुआ उस समय मैं काफ़ी करीब था। मैं धमाके की जगह पर पहुंचा, वहां एक लड़की को मैंने मरा देखा और कई लोग घायल थे। ये थे एक चश्मदीद खान मोहम्मद के शब्द।
संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि दमिश्क के बाहर विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर सीरियाई सरकार की बमबारी में अब तक 24 अस्पतालों और क्लिनिकों को नुकसान पहुंचा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय संयोजक पानोस मुमजीज ने बीबीसी से कहा कि दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील के बावजूद पूर्वी गूटा क्षेत्र में हर रोज बड़ी तादाद में आम लोग मारे जा रहे हैं या घायल हो रहे हैं। दमिश्क पर विद्रोहियों के हमले में भी कई लोगों की मौत हुई है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कैटालोनिया के अलगाववादी नेता कार्लस पुज्जेमोंट ने घोषणा की है कि वे स्पेन के साथ गतिरोध समाप्त करने के लिए अस्थायी रूप से राष्ट्रपति पद से हट रहे हैं। उनको चेतावनी दी गई है कि अगर वे बेल्जियम से शपथ लेने आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आत्मनिर्वासन में रह रहे पुज्जेमोंट ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि वो नंबर 2 नेता जॉर्डी सांचेज का नाम प्रस्तावित करेंगे। मैंने कैटालोनिया संसद को सूचित किया है कि उन्हें मेरी उम्मीदवारी को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए और मैंने उनसे कहा कि वो जल्द से जल्द संसदीय समूहों से चर्चा कर क्षेत्रीय राष्ट्रपति के लिए नए उम्मीदवार का चुनाव करें। ये थे कैटालोनिया के अलगाववादी नेता कार्लस पुज्जेमोंट के शब्द। बुर्किना फासो प्रशासन ने कहा है कि राजधानी वागाडुगू में हमला करने वाले 4 बंदूकधारियों को मार गिराया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक परिस्थितियां अभी नियंत्रण में हैं। चश्मदीदों का कहना है कि नकाबपोश बंदूकधारियों ने सैन्य सुविधा के मुख्य द्वार पर खड़े सैनिकों पर हमला किया और फ्रांस दूतावास के करीब भी गोलीबारी की। हमले के पीछे किस संगठन का हाथ है यह अभी तक साफ नहीं है। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बेजिक में कथित घोटाले के मामले में इसराइली पुलिस ने प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा से पूछताछ की है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि नेतन्याहू ने बेजिक से उसकी वेबसाइट पर अपने पक्ष में कवरेज के लिए गारंटी देने को कहा था। इसके बदले में कथित तौर पर नेतन्याहू ने संचार मंत्रालय को के कंपनी के पक्ष में नियामक फैसले देने को कहा था। इसराइली प्रधानमंत्री पर और भी दूसरे भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर जांच चल रही है। उन्होंने कोई भी गलत काम करने से इनकार किया है। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा के प्रमुख ने कहा है कि उनसे वादा किया गया है कि ईरान में महिलाओं के फुटबॉल मैच देखने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। जानी इन्फेंटिनो ने यह साफ तौर से नहीं बताया है कि उन्हें यह भरोसा किसने दिया है, लेकिन वो तेहरान में उच्च स्तरीय बातचीत के बाद बोल रहे थे। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। आज है मार्च की 2 तारीख और दिन शुक्रवार। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके में पुलिस ने 10 माओवादियों को मारने का दावा किया है। मारे गए लोगों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के एक जवान की भी मौत हो गई है। हालांकि माओवादी विचारक वरवरा राव ने इस मुठभेड़ को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। सुनिए रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ पुलिस का कहना है कि गुरुवार से माओवादियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के ग्रेहाउंड दस्ते का एक संयुक्त ऑपरेशन चल रहा था। पुलिस का दावा है कि शुक्रवार की सुबह छत्तीसगढ़ के बीजापुर के पुजारीपारा में कथित माओवादियों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 10 माओवादियों को मार गिराया। इलाके के DIG पुलिस सुंदर राज पी ने बताया,
आज सुबह एक ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहे थे, उसमें एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ थे। उसके पश्चात घटनास्थल से अभी तक 10 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर हुआ है, उसमें 4 महिला नक्सली है और बाकी 6 पुरुष माओवादी का डेड बॉडी रिकवर हुआ है। कुल 10 डेड बॉडी रिकवर हुआ था। उसके साथ साथ ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक का वेपन्स भी काफी बड़ी संख्या में मिला है।
इस मुठभेड़ में ग्रेहाउंड दस्ते का एक जवान भी मारा गया है, लेकिन माओवादी कवि और चिंतक वरवरा राव ने इस मुठभेड़ पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि सोए हुए माओवादियों पर पुलिस ने हमला किया होगा या इसी तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है। वरवरा राव ने BBC से बातचीत में कहा,
देखा गया तो तेलंगाना सरकार भी ये पूरा ऑपरेशन किया है। तेलंगाना का इंटेलिजेंस वाले हैं, तेलंगाना के ग्रेहाउंड वाले हैं, मतलब जो हुआ है छत्तीसगढ़ एरिया में हुआ है। वैसे देखिए तो भी एक झूठा मुठभेड़ है, क्योंकि जंगल में जो पोजीशन जो है, जो पॉजिटिव पोजीशन है, जो लोग रहते हैं उनको ही होता है। जो बाहर से जाते हैं उनका ज्यादा नुकसान हो रहा है, जो अंदर है उसको कम नुकसान हो रहा है।
पुलिस इस मुठभेड़ को अपनी बड़ी कामयाबी मानकर चल रही है, क्योंकि पिछले साल भर में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कथित माओवादियों के मारे जाने की घटनाएं कम ही सामने आई हैं। पुलिस का कहना है कि मारे गए लोगों में माओवादी संगठन के कुछ बड़े नेता भी हो सकते हैं। फिलहाल बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने अपना सर्चिंग अभियान और तेज कर दिया है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
और छत्तीसगढ़ के बाद अब चलते हैं अमरीका। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर आयात कर लगाने का ऐलान किया है। इसे दुनिया भर के प्रमुख स्टील निर्यातक देशों में चिंता की लहर दौड़ गई है। कुछ का कहना तो ये भी है कि इससे अमरीका को खुद ही नुकसान होगा। भारत से भी अमरीका स्टील का निर्यात किया जाता है। सुनिए एक रिपोर्ट फैसल मोहम्मद अली से।
अमरीकी स्टील और एल्यूमिनियम निर्माताओं के साथ व्हाइट हाउस में हुई एक बैठक के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जल्द ही इन दोनों के आयात पर 25% और 10% का कर लगाने वाला आदेश जारी करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति का कहना है कि वो दोनों अमरीकी उद्योग का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, जिन्हें आयात से नुकसान हो रहा है। इसे दशकों तक जारी रहने दिया गया है, जो बहुत ही शर्मनाक है। और हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आपके मुल्क में अब एल्युमिनियम और स्टील का उत्पादन नहीं हो सकता है। और ये पहले भी कहा जा चुका है, लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जो स्टील और एल्युमिनियम का उत्पाद न कर पाए वो मुल्क नहीं, हमें इसकी ज़रूरत है। हमें रक्षा क्षेत्र के लिए इसकी ज़रूरत है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। ऑस्ट्रेलिया ने, जो प्रशांत महासागर क्षेत्र के देशों के बीच मुक्त व्यापार की बात करता रहा है, कहा है कि इसका असर उन अमरीकी कामगारों पर पड़ेगा जो ऑस्ट्रेलियाई स्टील कंपनियों में काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री स्टीफन सियाबो ने कहा, ब्लू स्कोप की अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो फैक्ट्री है उसमें 3,000 अमरीकी काम करते हैं। ये उनके लिए हानिकारक होगा। फिलहाल हमें ये मालूम नहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया को इस मामले में छूट देंगे या ये फैसला एक तरफा होगा, लेकिन मैं इस संबंध में अमरीकी वाणिज्य मंत्री से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये थे ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री के शब्द। उन समूहों और देशों जिनसे अमेरिका के करीबी व्यापारिक संबंध हैं, जैसे यूरोपीय संघ और कनाडा, ने कहा है कि वो अमेरिका के खिलाफ अपना कर लगाएंगे। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चिन युंग ने कहा, अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम पदार्थों के आयात पर पहले ही कई तरह के कर लगा रखे हैं और अमेरिकी इंडस्ट्री को जरूरत से ज्यादा संरक्षण हासिल है। अगर दूसरे देश भी अमेरिका के उदाहरण को दोहराने लगे तो वैश्विक व्यापार पर इसका भारी असर पड़ेगा। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता के शब्द। भारतीय स्टील कंपनियां भी अपनी कुल उत्पादन का 2% अमेरिका निर्यात करती हैं।
तो बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुना रहे थे फैसल मोहम्मद अली। आज है शुक्रवार, यानी हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम विवेचना का दिन। यूं तो बंबई में कई अंडरवर्ल्ड सरगनाओं ने काम किया है, लेकिन उनमें से एक ऐसा नाम है जो मुंबई डॉक में कुली के रूप में अपना करियर शुरू करने के बाद न सिर्फ बंबई का चोटी का तस्कर बना बल्कि उसने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक जमाने के मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान हैदर मिर्जा की। हाजी मस्तान की 92वीं जयंती पर उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प पक्षों को याद कर रहे हैं रिहान फजल आज की विवेचना में।
जो भी चीज मुझ पे लगाते हैं, जो चीज भी मुझ पे बोलते हैं, वो उनके पास उनका कोई जवाब नहीं है। तो उनके पास कोई सबूत है मेरे खिलाफ तो वो जवाब दें।
ये आवाज है उस शख्स की जिसकी एक जमाने में मुंबई के अपराध जगत में तूती बोला करती थी। सफेद बुर्रा कमीज, पतलून और जूते, सफेद मर्सिडीज कार, उंगलियों के बीच दबी 555 की सिगरेट और पीछे की तरफ मुड़े हुए बाल। जी हाँ, ये छवि थी 60 और 70 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाले हाजी मस्तान हैदर मिर्जा की। 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कुट्टलोर जिले में जन्मे हाजी मस्तान 8 साल की उम्र में बंबई आए, जहाँ पहले उन्होंने क्रॉफोर्ड मार्केट में अपने पिता के साथ साइकिल बनाने की एक दुकान खोली और फिर 1944 में बंबई डॉक में कुली हो गए। वहीं उनकी मुलाकात एक अरब शेख मोहम्मद अल गालिब से हुई। मुंबई अंडरवर्ल्ड पर बहुचर्चित किताब डोंगरी टू दुबई लिखने वाले एस हुसैन जैदी बताते हैं,
वो जमाना वो था जो सारे अरब थे ये उर्दू बोला करते थे। ये जब मुंबई आए तो उनका हाजी मस्तान से पहचान हो गई थी और उन दोनों में दोस्ती होने लगी। तो हुआ ये कि गालिब ने शुरू शुरू में थोड़े से सोने के बिस्किट दे दिए जो मस्तान अपनी पगड़ी में छुपा के बाहर ले आते थे, बाद में इनके हवाले कर देते थे। फिर महीनों के बाद ऐसा हुआ कि गालिब ने एक उनका बख्ता बड़ा था जो इनके हाथ लग गया था मस्तान के, और गालिब ने उनको रखने को कहा लेकिन वो खुद गिरफ्तार हो गए गालिब और वो जेल पहुंच गए। उस बक्से में तकरीबन 100-200 बिस्किट होंगे सोने के, जो आप उस जमाने में लाखों की रकम के थे। वो अगर मस्तान चाहते तो वो उस सोने के बिस्किट को इस्तेमाल कर लेते, फरार हो जाते, लेकिन मस्तान ने उस बक्से को अपनी झोपड़ी में झुग्गी में जाके रख दिया छुपा करके अपने मैले कपड़ों के दरमियान, कभी किसी को फलकता नजर न रख दे दिया। गालिब जब तकरीबन 2.5 या 3 साल के बाद रिहा होके आए और उस बारे में पूछा, तब मस्तान उनको अपने घर ले आए और उन्हें ला करके उनको वो बक्सा दिखाया और गालिब अपने आप में हैरान और पूरी तरह मकबूज होके रह गए कि कोई शख्स इतना ईमानदार कैसे हो सकता है कि 3 साल में इसके पास इतने सारे सोने के बिस्किट थे, इसने किसी और को क्यों नहीं दी। उसके बाद उन्होंने अपने मस्तान को अपना पार्टनर बना लिया।
मस्तान की इज्जत में और इजाफा तब हुआ जब उन्होंने मस्काओ डॉक पर कुलियों से हफ्ता वसूल करने वाले स्थानीय गुंडे शेर खां पठान की पिटाई करवा दी। बाद में 1975 में अमिताभ बच्चन की मशहूर फिल्म दीवार में इस दृश्य को फिल्माया गया।
एक्चुअली रियल में हुआ ये था कि ये लोग जब पैसे उनसे वसूला करते थे तो मस्तान को वो पैसे देना बहुत खलते थे, क्योंकि एक तो दिन भर की मजदूरी के बाद आदमी को 12 और 15 रुपए मिल रहे हैं और ये लोग आके 1 रुपया रोज ले जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने मजदूर भाइयों से भी कहा कि भाई सुनो, हम इनकी बात क्यों सुने, कौन लोग हैं, हम इनको पैसे क्यों देते हैं। किसी ने उनकी बात मानी नहीं सिवाय एक आदमी के लड़के ने, जिसने कहा था कि अगर तुम पहल करोगे तो मैं तुम्हारे साथ जुड़ जाऊंगा। तो मस्तान ने डंडा लाया था कहीं से मजबूत सा और इस लड़के के हाथ में लोखंड का रॉड दिया था और इनके तकरीबन 4 या 5 गुंडे थे, वो उन्होंने मार मार के लोगों के सर फोड़ दिया और कुछ लोगों हड्डियां तोड़ दी। उसके बाद दूसरे मजदूरों को लगा कि अगर 2 लोग इन सारे गुंडों को भगा सकते हैं तो हम लोग सब अगर मिल जाए तो क्यों नहीं कर सकते।
दादा सब तरफ देखा, साला मिला ही नहीं। मेरा तो आइडिया है, वो भाग गया है, अब नहीं आने वाला।
आएगा नहीं तो जाएगा कहां, उसे जिंदा नहीं छोड़ने का।
पीटर
अच्छा हुआ तुम खुद यहाँ चलाया, हम तुम्हें ही ढूंढता था।
तुम लोग मुझे ढूंढ रहे और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ,
ये बात है।
इसे अपनी जेब में रख ले पीटर। अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। ये ले।
बंबई के नामी डॉन होने के बावजूद हाजी मस्तान ने खुद कभी बंदूक नहीं पकड़ी और न ही अपने हाथ से कभी कोई गोली चलाई। उन्हें जब भी कभी ऐसे काम की जरूरत हुई, उन्होंने एक दूसरे गैंगस्टर वरदराजन मुदालियार का सहारा लिया। वर्दा भी मस्तान की तरह तमिल थे और वर्सोवा, वसई और विरार इलाकों में उनका असर था। वर्दा से हाजी मस्तान के संपर्क में आने की भी एक दिलचस्प कहानी है।
एक स्मगलर को जरूरत पड़ती है लोगों की जो मारपीट करें, जो इनकी मदद करें माल यहाँ ले जाने में, और थोड़ी सी अपने आप में हिम्मत रखते हो, जुरत रखते हो। उस वक्त वरदराजन मुदलियार एक छोटा सा आदमी था, माटुंगा के एक झोपड़ी झुग्गे के इलाके में दादागिरी करता था वो, और वो इलीगल दारू का बिजनेस करता था। वो डॉक पे चोरी भी करता था और वो डॉक में एक बार पकड़ा भी गया था उस चोरी के इल्जाम में। अब ऐसे आदमी से हाजी मस्तान ने सोचा कि दोस्ती करना मेरे लिए बहुत मुफीद होगा। साउथ में दोस्ती करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जाके उनकी जबान बोलिए। वरदराजन ने जेल में एक ऐसे शख्स को देखा जो 555 सिगरेट पी रहा है, बहुत बड़ा सेट दिख रहा है और कोट पैंट पहना हुआ है, उनसे मिलने आया है, पुलिस का आदमी नहीं है। और जब उनसे मिलता है तो उनसे बड़े एहतरामन उनसे कहता है, वनकम सलेवर, यानी है मेरे सरदार, आप पे मेरा सलाम हो। अब आप सोचिए, झोपड़ी में रहने वाला आदमी, गुंडा सा आदमी, लोग उसको, पुलिस ने उसको बहुत पीटा है पकड़ के 3 दिन से, और उसको एक सेठ बोलता है सरदार आप पे मेरा सलाम, तो वरदराजन पे क्या इसका इंप्रेशन बैठेगा। वरदराजन जो है वो बहुत खुश हो गया और बातचीत में जब उसको लग गया कि हाजी
मस्तान उससे दोस्ती करना चाहता है, सच नहीं थी। मस्तान को नजदीक से जानने वाले मशहूर उर्दू पत्रकार खालिद जाहिद एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं, जब वो एक बार हाजी मस्तान के साथ बनारस गए थे।
वहाँ दाल मंडी करके एक एरिया है बनारस में, दाल मंडी में एक ऑर्डिनरी सा होटल, बहुत बड़ा होटल नहीं था वो, हम लोग वो होटल में ठहर गए थे। और फिर सुबह में लोगों में चर्चा हो गया कि वो हाजी मस्तान आया हुआ है इधर, तो बस पब्लिक जमा शुरू हो गई। अच्छा, मुझे एक चीज बेचैनी थी कि मैं रिएक्शन देखूं कि पब्लिक का रिएक्शन क्या है। तो मैं वहाँ से होटल से नीचे उतर के लोगों से कुछ बातचीत के दौरान पता चला कि हाजी मस्तान एक ऐसे महल में रहता है जिसके 365 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के पास में एक कार खड़ी रहती है। वो सुबह को निकलता है कार से और दिन भर अपना काम करके जब वापस आता है तो वो कार जो है वो बेच दी जाती है और पैसा गरीबों में बांट दिया जाता है। ये अजीब और गरीब सा एक चर्चा चल रहा था। फिर वहां से आने के बाद में मुझे लगा कि नहीं, इस पर एक स्टोरी बनना चाहिए। तो फिर मैंने उस पर स्टोरी बनाया था कि वो हाजी मस्तान जो 20 साल पुरानी गाड़ी में घूमता है, जिसके पास एक छोटा सा बंगला जरूर था और अच्छे एरिए में बंगला था, उसके ताल्लुक से लोग कैसी कैसी बातें उड़ाते हैं और क्या क्या है, तो वो पूरी स्टोरी मैंने किया था। और उस पर वो हाजी मस्तान जो है काफी चिढ़ा भी था कि आज तो मेरी बेइज्जती कर रहा है।
1980 में जब पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम के बीच गैंग वॉर शुरू हुई तो हाजी मस्तान ने उन लोगों के बीच सुलह कराने का बीड़ा उठाया। हालांकि इसके पीछे उनके निजी हित भी थे। उनके बंगले बैतुल सुरूर पर बंबई के सारे गैंगस्टर्स की एक बैठक हुई।
दाऊद इब्राहिम जो है वो कोंकणी थे, वो पठान नहीं थे, और पठान जो थे वो अपने आप को एक रियल बहादुर और एक जांबाज और जंगबाज कौन समझते थे। तो दाऊद और पठानों के दरमियान बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी और इस दुश्मनी की वजह से वो लोग एक दूसरे पे वक्तन फवक्तन हमले करते आए थे, जख्मी करते आए थे, एक दूसरे के माल को नुकसान पहुंचाते आए थे। हाजी मस्तान इनकी एक मुंह बोली बहन हुआ करती थी जिसको लोग जिना भाई दारू वाली के नाम से जानते हैं, जो पुलिस की खबरी थी। जिना भाई से वो अक्सर मशवरे करते थे जब भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। तो उनकी एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी बम्बई सेंट्रल के पास में, जो प्रॉपर्टी पे जो है एक चिलिया करके एक गुजराती कम्युनिटी है जिन लोगों ने इस पे कब्जा कर लिया था, और वो लोग बहुत मजबूत थे, यानी इतने मजबूत थे कि वो लोग हाजी मस्तान के गुंडों से, उनके दबदबे के बावजूद वो जगह खाली नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने जिना भाई से मशवरा किया कि भाई अपनी प्रॉपर्टी कैसे खाली कराऊं, तब जिना भाई ने कहा था कि अगर तुम चिलिया लोगों का दबदबा खत्म करना चाहते हो तो किसी ऐसे ग्रोह को लाओ जो उनसे ज्यादा पावरफुल हो और उनसे ज्यादा दबदबा रखता हो। तो उस औरत ने, उसने जमीन पर एक लकीर खींची और उसने कहा कि तुम इस लकीर को छोटा कैसे कर सकते हो बगैर इस लकीर को मिटाए हुए। तो हाजी मस्तान थोड़ा सा मुतहिर भी हुए थे कि मैं इनको मशवरा करने के लिए बुला रहा हूँ इतनी रात में बरसात में, और ये जो है मुझे नसीहत कर रही है और मुझसे जो है वो कुछ खेल खेल रही है। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपा मैं आपसे मशवरा कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं? बोले नहीं मुझे सवाल का जवाब दो और तुम्हारे मसले का हल भी इसी में है। वो कुछ जवाब ना दे पाए तो जिना भाई ने कहा कि लकीर को उसी वक्त छोटा किया जा सकता है जब तुम इससे बड़ी लकीर खींच दो तो ये लकीर छोटी हो जाएगी। और तब उन्होंने कहा कि अगर तुम पठानों को और दाऊद साबिर को मिला दो और दोस्ती करा दो तो ये दोनों अपने आप में मिल करके चिड़िया लोगों से मजबूत हो जाएंगे और फिर तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी खाली कराना आसान हो जाएगा। तमाम पठान और दाऊद और सारे लोग जो है इन दोनों कुरान पे रखकर कसम खाली कि आज से हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे, आज से मिलजुल के रहेंगे। और जब इनमें मेल हो गया, ये दोनों ग्रोह ने मिल करके चिड़िया लोगों को वहां से हटा दिया और वो कब्जा उनका खाली करा के हाजी मस्तान के वाले कर दिया।
हाजी मस्तान मुंबई की फिल्मी दुनिया से बहुत आकर्षित थे। उन्होंने न सिर्फ कई फिल्में प्रोड्यूस की बल्कि एक स्ट्रगलिंग अभिनेत्री सोना से विवाह भी कर लिया।
बॉलीवुड से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड थे ये, तो ये अक्सर मुहूर्त पे और प्रीमियर पे और यहाँ वहाँ जाया करते थे। तो उस जमाने एक स्ट्रगलर थी सोना, इनके दिलो दिमाग पे मधुबाला जो है पूरी तरह छाई हुई थी। सोना के बारे में लोग ये गुमान करते थे कि मधुबाला जैसी दिखती है, इन्होंने उस ख्याल से उसे शादी कर ली।
हाजी मस्तान की पहली पत्नी से 3 बेटियां थी। बाद में उन्होंने एक व्यक्ति सुंदर शेखर को गोद ले लिया। सुंदर शेखर बताते हैं कि दीवार फिल्म बनने के दौरान उसके लेखक सलीम और हीरो अमिताभ बच्चन उस किरदार को समझने के लिए हाजी मस्तान के पास आया करते थे।
सारे अमिताभ बच्चन क्या पहला बच्चन क्या था अभी बोलना चाहिए, अभी उनका नाम बड़ा हो गए हैं। पहला राज कपूर बाबा के कास्ट दोस्त थे, सारे फिल्म एक्टर बाबा के कास्ट थे। संजीव कुमार बोलो, दिलीप कुमार बोलो, धर्मेंद्र बोलो, फिरोज खान, संजय खान, जितने भी एक्ट्रेस हैं बाबा का करीब से अच्छा दोस्त। संजीव कुमार एकदम कास्ट दोस्त था बाबा का। अब ये जो पिक्चर का ये जो लिखने वाला कौन है, सलीम खान, ये सब बाबा के पास आते थे, अच्छे बैठते थे, सब लिख के लिखते थे स्टोरी। उस टाइम देखो अमिताभ बच्चन चमका तो ये दीवार के पास ही चमका ना सब। बाप का नेचर कुछ अलग ही नेचर था। मेरे शादी कराया, सिल्क पहन के शादी करा रहा है और करीम लाल अचानक आ गया, अचानक आ गया तुम सिल्क पहना। बाप ने क्या बोला, बोले मैं मेरे बेटे की शादी है। वो बात आज भी मेरे दिल के अंदर है।
80 के दशक की शुरुआत में हाजी मस्तान की ताकत में कमी आनी शुरू हो गई थी क्योंकि मुंबई के अंडरवर्ल्ड में नई ताकतें उभरना शुरू हो गई थी। खालिद साहिद बताते हैं।
उसके बीच कई नए गैंग्स तैयार हो गए थे और उनकी कदर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिनके सामने मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, जिनके सामने हाजी मस्तान का वैल्यू गिरना शुरू हो गया। और कई ऐसे मौके आए कि किसी को भेज देने और फिर वो गैंग की तरफ से इनको टेलीफोन आ जाए, क्यों भेजा, क्या किया, ये किया। तो वो जो हालात नए जो ग्रुप उभरना शुरू हो गए थे उन्होंने इनको बिल्कुल किनारे पे डाल दिया था। तो वो कार्ड भेज देना या नाम से पैसे मिल जाना, बहुत से बिल्डर ऐसे थे जो उनका नाम यूज करते थे, खान मस्तान भाई ने ले लिया है, मस्तान भाई ने ले लिया है, तो उनके काम बन जाते थे। नए गैंग से आने के बाद में फिर वो हैसियत नहीं रह गई, फिर लोग उस नाम से डरे और उस नाम से पैसे दे दें।
1974 में इंदिरा गांधी ने हाजी मस्तान को पहली बार मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार करवाया था। 1975 में आपातकाल के दौरान भी हाजी मस्तान को सीखचों के पीछे रखा गया। वो जयप्रकाश नारायण के संपर्क में आए और इसी वजह से उनका राजनीति में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम की एक पार्टी बनाई। उसी दौरान बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा था,
राजनीति में इसलिए सक्रिय हुए हम कि जब हमने पीपल सेक्रेटरी एक बनाया था, हम दवा बांट रहे थे गरीबों को, वो पुलिस से देखा नहीं गया, फिरका परस्तों से देखा नहीं गया कि जले हुए को खाना खिलाना वो समझते थे पाप है और हम समझते थे पुण्य है। इस पर मेरे पे रेड मार दी मेरे दवाखाने के ऊपर और कुछ नहीं निकला, एक सुई नहीं निकला, और 25 दिन जेल में रख के छोड़ दी। जब से मैंने सोचा कि मुझे सियासत में जाना चाहिए।
अरे जो मुजरिम होते हैं ये एक स्टेज के बाद, एक मंजिल पे आने के बाद में सफेद पोशी की तमन्ना करते हैं। ये चाहते हैं कि अपनी जिंदगी बुढ़ापे में ये शराफत से रहे और पुलिस इनको खींच खींच के जाके इनके लॉकअप में न डाल दे और इनके साथ बुरा बर्ताव न करे। तो आपने कहावत सुनी होगी, पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिसोर्ट फॉर स्काउंडल। जितने भी ऐसे लोग होते हैं वो सब जो है सियासत में चले जाते हैं। इनको भी लगा कि मैं पॉलिटिक्स में चले जाऊं, लेकिन बम्बई इनसे वाकिफ था, इसने कभी हाजी मस्तान को इज्जत बख्शी नहीं। हालांकि इन्होंने दलित समाज के जोगेंद्र कवाड़े के साथ मिल करके एक दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ DMSM बनाया, लेकिन वो पार्टी कुछ खास कर नहीं पाई। बाद में ये खत्म भी हो गई और इसका कोई अपने आप में वजूद नहीं रहा और इसमें कोई इस पार्टी में कोई रसूख या मजबूती नहीं रही।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
तो रेहान फजल की ये विवेचना आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर लिखिएगा। और अब बात होली की। झारखंड में होली के गीतों को लेकर कई दिलचस्प प्रयोग होते रहे हैं। ये इकलौता ऐसा राज्य है जहां एक ही होली गीत में 5 रागों का समावेश होता है। इसे पंचरंगी कहते हैं। यूं तो यहां के आदिवासी साल भर उत्सवी माहौल में रहते हैं, लेकिन होली की पूर्व संध्या पर गांव के अखड़ा में लोग रात भर नाचते गाते हैं। इस दौरान पारंपरिक गीत संगीत पर लोग सामूहिक नृत्य करते हैं। हालांकि अब रीमिक्स गीत भी बजने लगे हैं, इसके बावजूद आदिवासियों में पारंपरिक गीतों का ज्यादा क्रेज है। सुनिए रांची से रवि प्रकाश की एक खास रिपोर्ट।
यह आवाज सारंगी की है जिसे हरी मुंडा बजा रहे थे। उन्होंने अपनी सारंगी खुद बनाई है। इसे कटहल की लकड़ियों से बनाया गया है और इसके तार घोड़े की पूंछ से बने हैं। झारखंड के तमाम वाद्य यंत्र यहाँ के आदिवासी खुद ही बनाते हैं, लिहाजा इसका संगीत अलहदा होता है। गीतों की रचना भी आदिवासियों ने खुद ही की है। झारखंड के चर्चित लोक कलाकार पद्मश्री मुकुंद नायक बताते हैं कि जनजातीय समाज में गीतों की रचना सैकड़ों साल पहले से की जाती रही है। इन गीतों को गुनगुनाते वक्त कई दफ़ा हमें पता भी नहीं होता कि इसे किसने और कब लिखा था, फिर भी ये गीत लोगों की जुबान पर हैं। पद्मश्री मुकुंद नायक ने ऐसा ही ये गीत BBC के लिए गाया। झारखंड के जंगलों में पलाश के फूल खिल चुके हैं, मानो जंगल में आग लग गई हो। उसकी ठूंठ वैसी ही काली है जैसे दीपक तले अंधेरा। जाने माने साहित्यकार और रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय भाषा विभाग के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष डॉक्टर गिरधारी राम गौजू कहते हैं कि फागुन में गाया जाने वाला पंचरंगी फागुन गीत झारखंड की विशेषता है।
फगुआ जब आता है तो प्रकृति निमंत्रण बांटती है। माघ के महीना आते ही पूरे जंगल की हरियाली पीले रंग में रंग जाती है और वो पीले पत्ते गिर जाते हैं और वायु दूत बवंडर बनकर उस पीले पत्तों को झारखंड के कोने कोने में पहुंचाती है।
आदिवासी फागुन गीतों के पात्र भी वही हैं जिनका जिक्र भारत के दूसरे राज्यों के गीतों में होता है। मसलन इस गीत में राधा पे प्रीतम की बात जो रही है, कहती है कि फागुन आ गया है, न जाने कृष्ण कब आएंगे। पद्मश्री मुकुंद नायक ने इस गीत में भी पंचरंगी लय का प्रयोग किया है जो अनूठा है।
तब देखिए दूसरा राग आ रहा है
जी।
हालांकि बदलते जमाने में रिमिक्स गाने भी बजने लगे हैं। नागपुरी का यह गीत इन दिनों लोगों की जुबान पर है। झारखंड के जाने माने स्कॉलर रामदयाल मुंडा कहते थे कि नाची से बाची, मतलब जो नाचेगा वही बचेगा। आदिवासी समाज ने उनके इस नारे को सूत्रवाक्य मान लिया है। होली के मौके पर रांची समेत पूरे राज्य में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये इनके खुश होने का मौका है। रवि प्रकाश, BBC रांची।
और अब वक्त हो चला है प्रमुख समाचारों का।
BBC समाचार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस ने एक मुठभेड़ में कम से कम 10 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। पुलिस ने कहा है कि मारे गए माओवादियों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। एल्यूमिनियम और स्टील के आयात पर कठोर टैरिफ लागू करने पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि व्यापार युद्ध अमरीका के लिए अच्छा रहेगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में विदेशी सैनिकों को निशाना बनाकर किए गए एक कार बम धमाके में एक नागरिक की मौत हुई है। इस धमाके में आसपास खड़े अन्य 14 लोग घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि दमिश्क के बाहर विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर सीरिया सरकार की बमबारी में अब तक 24 अस्पतालों को नुकसान पहुंचा है। BBC समाचार।
तो दिन भर की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली शाकिर आलम ने। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह 6:30 बजे कार्यक्रम नमस्कार भारत में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।